ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं रात्रादरः न परः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी देववृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। भद्र पूर्णिमा उत्सव के चौथे दिन में आपका सब यहाँ श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में हार्दिक स्वागत है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के पहले अध्याय की चर्चा हो रही थी। विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया सलाह लेने के लिए। विदुर जी ने सीधे जवाब दिया, धृतराष्ट्र को अच्छे नहीं लगे उनके वचन। दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा। दुर्योधन ने अपशब्द कहे विदुर जी को, और ये अपशब्द तीर के समान थे जो कि विदुर जी के हृदय को जाके चुभे। दुख तो बहुत हुआ उनको, परंतु उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान की योजना है। भगवान श्री कृष्ण के महामाया शक्ति के अधीन होकर दुर्योधन इस तरह से अनाप शनाप बक रहा है, और उधर विदुर जी योग माया के प्रभाव में समझ पाए कि ये मेरे लिए वास्तव में प्रतिकूल परिस्थिति न होकर एक अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि अब राजमहल के और संसार के और ये सारे जो राजनीति के जो मामले थे इनको छोड़कर अब वो जा सकते थे सीधे भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने के लिए। उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, और कष्ट तो आते ही रहेंगे, उनका हमें लाभ उठाना चाहिए, इसके बजाय कि हम शिकायत करें या अन्यों में कोई दोष ढूंढें, यहाँ तक कि कभी भगवान में दोष ढूंढें। हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान ने ये कष्ट हमारे जीवन में इसलिए भेजा है ताकि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएं। विदुर जी इस बात को भली भांति समझ पाए, चुपचाप अपने धनुष को द्वार के बाहर रख लिया ताकि दुर्योधन समझ ले कि मैं इस धनुष का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अब मैं विरक्त हो चुका हूं, मुक्त हो चुका हूं, इस सारे झमेले से मुक्त है, अब मैं सीधे जाके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लूंगा। श्रील प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में कहते हैं कि विदुर जी सीधे श्री कृष्ण के पास नहीं गए, हालांकि वो ऐसे कर सकते थे। श्री कृष्ण उस समय अपनी प्रकट लीला धरातल पर कर रहे थे, फिर भी विदुर जी ने अपने आप को अयोग्य समझा। उन्होंने सोचा कि इतने पाप मैंने किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का संग किया हुआ है जैसे दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और मेरे बड़े भाई धृतराष्ट्र, तो मुझे शुद्धिकरण की आवश्यकता है इसके पहले कि मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने आने का साहस करूं। तो तीर्थ यात्रा पे जाना उन्होंने ठीक समझा। तीर्थ यात्रा में निकल पड़े विदुर जी, अनेक स्थानों में गए। कल हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम पर्यटन के दृष्टि से जाएं, या ये भी नहीं है कि हम केवल अपने पापों को वहाँ तीर्थ स्थानों में छोड़ आएं। पापों तीर्थ स्थानों में जो पापों का भार है केवल उनको बढ़ा के यूं ही चले ना आएं, बल्कि हमें तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, विशेष रूप से वहाँ उपस्थित भक्तों का संग करने के लिए और उनसे कुछ हरि कथा सुनने के लिए और हरि नाम संकीर्तन और कृष्ण सेवा करने के लिए। सेवा भाव से हमें जाना चाहिए, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के उद्देश्य से हमें जाना चाहिए। विदुर जी अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहे, जहां पर कि अनेक ऐसे भगवान के मंदिर भी थे। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ पर काफी विस्तार में समझाते हैं कि इन मंदिरों का महत्व क्या है। भगवान के मंदिरों में जो भगवान के विग्रह हैं वो केवल प्रतिमाएं नहीं हैं, ये एक गलत धारणा है सारे समाज में। लोग सोचते हैं कि भगवान की प्रतिमा है और हम प्रतिमा के उपासक हैं, परंतु ये प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा किन की होती है? यह संसार के किसी व्यक्ति की होती है, परंतु भगवान के लिए प्रतिमा शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप उन भौतिक पदार्थों में प्रकट हो जाते हैं। अंततः ये भौतिक शक्ति भी तो उन्हीं की है, इसलिए यदि भगवान चाहें कि वो भौतिक पदार्थों में प्रकट हो जाएं, तो ये उनके लिए तो असंभव नहीं है, न मुश्किल भी नहीं है। तो भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। वैसे अभक्तों के लिए भगवान अर्च विग्रह का रूप धारण नहीं करते हैं। अर्च विग्रहों के लिए तो उनकी भौतिक शक्ति ही पर्याप्त है, परंतु जो श्रद्धालु भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अपने स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से, दोनों से भगवान की सेवा और भी आतुरता से, अच्छी तरह से करना चाहते हैं, सुचारू रूप से करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। अर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यहां श्रील प्रभुपाद जी उनको अर्चा मूर्ति कहते हैं या अर्चा विग्रह, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कि अपने पर व्योम वैकुंठ जगत में रहते हुए हमें दिखते नहीं हैं इन आंखों से, तो भगवान कृपा करके ऐसा एक रूप धारण करते हैं कि हम इन आंखों से भगवान को देख सकते हैं। जब कोई हमें कहते हैं कि क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं, कहते आइए मंदिर में देखिए, दर्शन कीजिए, ये भगवान का जो अर्चा विग्रह है ये भी भगवान ही है। नहीं नहीं, ये तो भगवान की मूर्ति है, हम भगवान देखना चाहते हैं, परंतु इनमें कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी और एक तात्पर्य में, अगले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक जब हम किसी पत्र को किसी को भेजना चाहते हैं, पत्र लिख देते हैं और डाक विभाग के अधिकृत किसी लाल डब्बे में हम उस पत्र को डालते हैं, और ये हमें निश्चित होता है कि पत्र जो है वो गंतव्य पे, सही गंतव्य पे पहुंचेगा। यदि पता ठीक तरह से लिखा हुआ हो तो वो पत्र अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि ये अधिकृत जगह हम इसे डाल रहे हैं। यदि हम किसी भी डब्बे में जो सड़क पे पड़ा हुआ है हमारे पत्र को डाल दें, तो वो पत्र गंतव्य तक, वांछित गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा अवश्य। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो अर्चा विग्रह होते हैं, ये भगवान के अधिकृत रूप हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है। ऐसे वैसे कोई विग्रह का निर्माण नहीं होता है। शिल्प शास्त्रों में भी बहुत विस्तार में बताया गया है कि अर्चा विग्रह कैसे बनाए जाते हैं। शिल्प शास्त्र हैं ये, काफी विस्तार में ये सब ज्ञान दिया गया है। साथ साथ में भगवान के इतने सारे शुद्ध भक्त हुए हैं जिन्होंने इन विग्रहों को देखकर ये समझ लिया है कि ये भगवान से अभिन्न है। गहरे साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने अपने हृदय की जो भक्ति भावना है वो उन्होंने अपने कविताओं में, अपने गीतों में आदि व्यक्त किए हैं। तो ऐसे महान भक्तों के कविताओं से, गीतों से, उनके वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि भगवान के अर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बल्कि श्री संप्रदाय के एक महान भक्त रहे जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। प्रार्थना तो क्या, प्राय धमकी ही दी थी भगवान को कि जब हम वहां वैकुंठ में आएंगे यदि आप ऐसे न दिखे जैसे कि आप यहां मुझे मंदिर में दिख रहे हो, तो मैं वापस लौट के आ जाऊंगा, मुझे वहां नहीं रहना है। लेकिन जब हम देखते हैं भगवान को, भगवान के विग्रह को, शायद मन में तो ये रहता है कि आखिर ये पत्थर से बने हुए हैं या धातु से बने हुए हैं, परंतु इससे परे हमें होना है, प्रयास करना चाहिए। वैसे और कोई पुतली हो, कोई प्रतिमा हो किसी की जो भगवान की न हो, तो हम उस पुतली उस प्रतिमा से हम प्रार्थना करें तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये अर्चन विग्रह भगवान के अधिकृत रूप है। साक्षी गोपाल की कथा तो आप सब जानते ही हैं। तो विदुर जी जब ऐसे तीर्थ यात्रा में गए, तो इन विभिन्न तीर्थ स्थानों में जगह जगह पे भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के मंदिर थे, वहाँ दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने अपना साधन भजन बहुत अच्छी तरह से किया। वो अकेले भ्रमण कर रहे थे। क्यों अकेले भ्रमण कर रहे थे? पहली बात तो ये है कि जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत तीव्र एक इच्छा होती है क्या करने के लिए, बातें करने के लिए। दूसरा व्यक्ति होता है हमारे साथ तो तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हम भगवान कृष्ण के बारे में ही बात करें, संसार के बारे में बहुत बातचीत करते रहते हैं। तो विदुर जी ये नहीं चाहते थे कि तीर्थ यात्रा में भगवान के अतिरिक्त और किसी भी विषय के बारे में चर्चा करें, और वो स्मरण भी नहीं करना चाहते थे। जिन विषयों के बारे में हम श्रवण करते हैं उन्हीं का स्मरण होता रहेगा, इसलिए श्रवण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण हमारे भक्ति की शुरुआत है, बल्कि हर चीज की शुरुआत श्रवण से होती है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। इसलिए प्रहलाद महाराज ने जो नवविधा भक्ति का उल्लेख किया है श्रीमद् भागवतम में, क्रम इस प्रकार से उन्होंने दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सबसे पहले श्रवणम, जब हम सुनते हैं और फिर जैसे हमने सुना है वैसे ही हम कीर्तन करते हैं, हम कहते हैं, तो फिर स्मरण हो जाता है। अक्सर भक्तों की शिकायत ये रहती है कि हम याद नहीं रख सकते। हम श्रीमद् भागवत या भगवद गीता पढ़ते हैं परंतु याद नहीं रहता, तो इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम बार बार सुनते रहें, बार बार पढ़ते रहें। जब हम श्रवण करेंगे कानों से या आंखों से, फिर बात वहीं पे हमें समाप्त नहीं करनी है, हमें बोलना चाहिए। जो हमने सुना है आज, चाहे कोई प्रवचन हमने सुन लिया हो, तो जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो हमारी बातें, हमें उनसे जाके उनको सुनाना चाहिए कि आज हमने प्रवचन में क्या सुना या आज हमने भागवतम में क्या पढ़ा। इस तरह से जब श्रवण के बाद कीर्तन होगा तो फिर स्मरण आसानी से होगा। कई बार ऐसे हमारे छोटे छोटे मंदिरों में ऐसे प्रथा होती है जहां बहुत कम लोग आते हैं सुबह के कक्षा में, तो प्रवचन के बाद सारे भक्त जो इकट्ठे हुए हैं गोलाकार में बैठते हैं, और जो भी प्रवचन में उन्होंने सुना है वो एक एक करके बिंदु कुछ कह देते हैं, ताकि जो सुना था वो याद रहता है। इस तरह से वो घूमते रहते हैं जब तक कि किसी को और कुछ कहने के लिए रहा नहीं, तो श्रवण कीर्तन स्मरण हो जाता है। तो शुरुआत श्रवण से होती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं। तो विदुर जी नहीं चाहते थे कि वो संसार की बातें सुने, और वैसे भी वो चाहते थे कि अभी ध्यान उनका केवल भगवान पे रहे, तो एकांत स्थान में चले वो और केवल भगवान का स्मरण करते हुए वो चले। यहां पे अनंत लिंगई अर्थात अनंत भगवान के लिंग अर्थात उनके जो विग्रह है उनका दर्शन भी सब जगह करते हुए गए। पहले दिन इस कथा के हम चर्चा कर रहे थे कि सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा से लौटकर आ गए थे वापस हस्तिनापुर, और जब लौट के आए तो युधिष्ठिर महाराज आदि ने उनका स्वागत किया, बहुत प्रसन्न हुए सारे हस्तिनापुर के निवासी कि विदुर जी यहाँ वापस लौट के आ गए हैं। बहुत लंबे समय बाद वो आए थे, लगभग 30-35 वर्ष लगे थे उनको अपने तीर्थ यात्रा में। और ये अंक हम कहाँ से निकाल रहे हैं, 30-35 वर्ष वो तीर्थ यात्रा में गए, हम ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब दुर्योधन ने विदुर जी से कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, और इस घटना के बारे में हम कल ही पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो उस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। इसके बाद फिर श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, उन्होंने समझौता करने का प्रयास किया था दोनों कौरव और पांडवों के बीच में, परंतु वो भी असफल रहे थे। और अंततः जब कोई और मार्ग नहीं रहा तो फिर युद्ध होना ही था, तो युद्ध हुआ। 18 दिन युद्ध चला, कौरव सेना का विनाश हुआ और युधिष्ठिर महाराज फिर राजगद्दी पर बैठ गए। ऐसे बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज ने राज किया वहां पर 36 वर्षों तक लगभग। और 36 वर्षों तक क्यों किया, उसके बाद भी कर सकते थे, परंतु उन्हें खबरें मिली, उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हो चुका है और यदुवंश का नाश हो चुका है। तब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, अब हमें वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। तो पांचों पांडव द्रौपदी के साथ चल पड़े हस्तिनापुर से हिमालय में, और उनकी यात्रा आगे चलती रही। महाभारत में और श्रीमद् भागवत में भी संक्षेप में वर्णन आता है। तो ऐसे बताया जाता है कि राज्य युधिष्ठिर महाराज का लगभग 36 वर्षों का था, और विदुर जी जब लौट के आए थे तो थोड़े समय पहले आए, युधिष्ठिर महाराज और अन्य उनके भाइयों के राज्य त्याग के हिमालय में जाने से लगभग थोड़े समय पहले आए थे, और युद्ध प्रारंभ होने से थोड़े देर पहले गए थे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि विदुर जी की तीर्थ यात्रा लगभग 30-35 साल की हुई होगी। तो इतने लंबे समय के बाद विदुर जी लौट के आए। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भूरी भूरी प्रशंसा विदुर जी की और उनसे कहा, भवत विदा भागवतास तीर्थ भूतः स्वयं विभो, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। उन्होंने कहा, भवत विधा भागवताः, कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप जैसे भागवत, भागवत अर्थात जो भगवान से संबंधित हैं, देखिए पुस्तक को भी भागवत कहते हैं और व्यक्ति को भी भागवत कहते हैं, जो भगवान से संबंधित है उसे भागवत कहते हैं, भगवत से संबंधित भागवत। परंतु पुस्तक और व्यक्ति में अंतर लाने के लिए भागवतम कहा जाता है, क्योंकि भागवत शब्द दोनों के लिए लागू होता है। जब हम कहते हैं कि एक भागवत, हमने भागवत सुना, भागवत से सुना, तो व्यक्ति से भी सुन सकते हैं, पुस्तक से भी सुन सकते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण कहने के लिए हम कहते हैं भागवतम हमने सुना, अर्थात पुस्तक हमने सुना। तो भागवत जो है यहां पर विशेष रूप से महान भक्त का संबोधन है। भवत विधा भागवता है, हे प्रभु आप वास्तव में महान भागवत है, महान भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तीर्थ भूता स्वयं विभो, स्वयं आप ही तीर्थ स्थान हैं, चलते फिरते तीर्थ स्थान आप हैं। तीर्थभूताः स्वयं विभो, हे विभो आप ही तीर्थस्थान बने हैं। यहाँ तक कि आप तीर्थस्थानों को तीर्थस्थान बनाते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सारे स्थानों को आप तीर्थस्थानों में परिवर्तित करते हैं आपकी उपस्थिति मात्र से। और ऐसा क्यों? स्व अंतस्थेन गदाभृता, आपके अंतःकरण में स्वयं भगवान गदाधर श्री कृष्ण श्री विष्णु का वास है। क्योंकि आप भगवान को सदैव अपने हृदय में रखते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं, इसलिए आप चलते फिरते तीर्थ स्थान हैं। अब ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या केवल विदुर जी के हृदय में भगवान विराजमान थे? क्या वो हम सब के हृदय में विराजमान नहीं है क्या? अवश्य हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में। केवल मनुष्यों की बात तो दूर है, हर एक प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है। तो फिर हम ऐसे जैसे युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी के बारे में कहा था, हम ऐसे साधारण लोगों के बारे में क्यों नहीं कहते कि वो भी चलते फिरते तीर्थ स्थान है, क्योंकि भगवान उनके भी हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। अंतर ये है कि विदुर जी को भगवान के अपने अंतःकरण में होने का पूर्ण साक्षात्कार था, परंतु साधारण व्यक्ति को या किसी नौसुखिया भक्त को भी भगवान के अंतःकरण में जो उपस्थिति है उसका साक्षात्कार नहीं होता है। पुस्तकीय ज्ञान थोड़ा बहुत हो सकता है कि भगवान हमारे हृदय में है, परंतु उसका अनुभव होना, उसका साक्षात्कार होना यह दूसरी बात है। अंतःकरण में भगवान के शुद्ध भक्त सदैव भगवान का दर्शन करते हैं, वो ध्यान करते हैं भगवान के सुंदर रूप के ऊपर। ऐसा आवश्यक नहीं है कि भगवान को बाहर वो हर जगह देखते रहें। एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा था, जब ऐसे कहा जाता है कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को सब जगह देखते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बाहर हर एक अणु में भगवान 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 ऐसे रूप देखते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, इसका मतलब है कि वो भगवान की संपत्ति को जानते हैं, भगवान की सृष्टि है, हर चीज को देखकर वो भगवान का स्मरण करते हैं, ये जानकर ये कि भगवान की शक्ति है। और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, देखो ये ऐनक यहाँ पे है, ये चश्मा यहाँ पे है इस मेज के ऊपर, तो इसमें इस ऐनक को देखते हो तो तुम्हें क्या याद आता है? तो शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी हम आपको ये याद करते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये चश्मा आपका है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब हम जानते हैं कि ये सब कुछ भगवान का ही है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति है, तो इसलिए शक्ति को देखकर हमें शक्तिमान का स्मरण होता है। इसलिए तो भगवद गीता में जगह जगह भगवान ने हमें थोड़े बहुत संकेत दिए हैं कि किस तरह हम सृष्टि में रहते हुए भी भगवान का स्मरण कर सके, साधारण से साधारण वस्तुओं को देखते हुए सुनते हुए सूंघते हुए हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। रसो हम अब सुकौते या प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, मैं ही जल का स्वाद हूं हे अर्जुन। वैसे रस कहते हैं, रस का मतलब पानी है, और भी कोई रस हो उसका भी स्वाद, जैसे हम किसी फल का रस का पान कर रहे हैं तो स्वाद कृष्ण है। तो जब हम पानी पी रहे होते हैं या कोई और फल का रस पी रहे होते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जब हम चांद की किरणों को देखते हैं, सूरज की किरणों को देखते हैं, ये भगवान की शक्ति है, तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि शुद्ध भक्त वो है जो हर एक चीज का संबंध भगवान श्री कृष्ण से देखता है, और इस तरह से हम कहते हैं कि वो सब जगह भगवान को देखते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर कण में वो भगवान का रूप ही देख रहे हो, परंतु कभी कभी वो अपने अंतःकरण में अवश्य देख पाएंगे भगवान का रूप। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति के आंखों पे प्रेम का अंजन लगा हुआ है, कृष्ण प्रेम का अंजन, तो वो अपने अंतःकरण में स्थित भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन सदैव करता है। और ऐसे श्री गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस तरह से विदुर जी को साक्षात्कार था कि श्री कृष्ण उनके हृदय में हैं, इसलिए वो तीर्थ स्थान थे। साधारण व्यक्तियों को ऐसे साक्षात्कार नहीं होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि वो चलते फिरते तीर्थ स्थान हैं। हालांकि एक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सही है। इसलिए देखिए, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक दर्शन है, और विशेष करके वैष्णव दर्शन, ये इतना गहरा है कि हमें सिखलाता है कि हर चीज दिव्य है। वास्तव में हर एक अणु में भी तो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है ना। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो हर अणु में जब भगवान है तो हर अणु फिर दिव्य है, और यदि हर अणु दिव्य है तो फिर भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर ही क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण एक दार्शनिक तत्व है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक, इन दोनों में अंतर जो है वो वास्तव में एक चेतना का अंतर है। जब हम समझ लेंगे कि ये सब कुछ भगवान से संबंधित है तो उस समय हमारी दृष्टि परिपूर्ण हो जाएगी। तो विदुर जी के पद चिन्हों में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां पे वो कह रहे हैं, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जहां भी आप जाते हैं उस स्थान को आप तीर्थ स्थान बना लेते हैं। और वास्तव में तीर्थ स्थान की परिभाषा भी तो यही है ना। तीर्थ स्थान का मतलब क्या है? जिस स्थान में भगवान ने और भगवान के भक्तों ने कोई लीलाएं किए हैं, भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, तो ये स्थान तीर्थ स्थान कहलाते हैं। तो विदुर जी एक चलते फिरते भागवत हैं, चलते फिरते तीर्थ स्थान हैं। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने उनकी प्रशंसा की। तो कहां कहां गए विदुर जी? अयोध्या गए, द्वारका गए, मथुरा गए और अनेक जगह गए। ऐसे भ्रमण करते करते उन्होंने सारे ऐसे कर्तव्य किए कि जो भक्तों को करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्त का सर्वोच्च कर्तव्य होता है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास करना। और जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को प्रसन्न करने की बात नहीं है, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने की बात है। तो हम जब धाम में जाएंगे तो अन्य चीजों को छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में हमें लगना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम में से हर एक कभी ना कभी तो किसी न किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं। कभी हम वृंदावन जाते हैं तो कभी मायापुर, तो कभी द्वारका। तो हमारी भावना कैसे होनी चाहिए जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं? तो महान भक्तों के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि तीर्थ स्थानों में जाते हुए हमारी मानसिकता कैसे होनी चाहिए, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। तो विदुर जी ने सारे ऐसे कार्य किए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसका मतलब है कि उन्होंने सारे भक्ति के नियमों का पालन किया, जैसे कि एकादशी के व्रत का पालन करना, मंदिरों में जाके भगवान का दर्शन करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान के सामने जाके। जब हम अर्चा विग्रह के सामने खड़े होते हैं मंदिर में, अवश्य दर्शन करते हैं। ये आंखों के लिए एक उत्सव होता है, जैसे कि गोपियों के बारे में बताया जाता है, नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृश्य पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। क्योंकि वो सदैव दर्शन कर रहे थे श्री कृष्ण का, गोपियों के लिए नित्य उत्सव था, प्रतिदिन एक उत्सव था। परंतु हम भी ऐसे नित्य उत्सव का पालन कर सकते हैं, क्योंकि हम भी नित्य नियम से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, तो हमारे लिए भी प्रतिदिन एक उत्सव है। गोपियां बल्कि टोकती हैं, डांटती हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी ने कितनी बड़ी गलती कर ली, पलकें झपकने लगते हैं, हमें बंद करने पड़ते हैं और उस समय भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए मनुष्य के आंखों को ठीक से नहीं बनाया, तो ऐसे उनकी भावना है। तो भगवान के सामने जब जाते हैं हम, तो दर्शन तो अवश्य करना चाहिए, परंतु मन ही मन में या कुछ वाचक स्वरूप में भी भगवान की स्तुति भी करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में और अन्य अनेक ग्रंथों में भगवान के संबंध में बहुत सारे सुंदर स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, तो ये स्तव पाठ या स्तोत्र पाठ हमें करना चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता है, शिक्षाष्टकम है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। तो जब हम भगवान के सामने जाएंगे मंदिर में, तो हमें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए इन स्तोत्रों को, स्तवों को, भले एक श्लोक हो, दो श्लोक हो, तो भगवान के सामने हम कुछ कहें भक्ति भाव से, यांत्रिक रूप से नहीं, हृदय से इस प्रार्थना को हम कहें वहां पे, संप्रार्थनात्मिका, जो भावनात्मक एक प्रार्थना हो वो कहें। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी श्लोक हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र तो याद है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के सामने खड़े होकर कह सकते हैं, क्योंकि ये महामंत्र भी तो एक प्रार्थना ही है। महामंत्र का अर्थ क्या है? हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कृपया आपकी सेवा में आप लगाइए, सदैव आपके चरण कमलों में हमें रखिए और आपकी सेवा में आप लगाइए हमें, तो यह भी एक प्रार्थना है। तो इस तरह विदुर जी ने जितने भी भक्तों के लिए उचित जो करने लायक करने योग्य नियम है उन सब का पालन किया। उनको और किसी चीज की परवाह नहीं थी, हस्तिनापुर छोड़ के आए थे वो, अब बिल्कुल हस्तिनापुर के बारे में और वहां के षड्यंत्रों के बारे में, राजनीति के बारे में वो सब नहीं सोच रहे थे। देखिए कभी कभी व्यक्ति को अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, अपने बारे में सोचना अर्थात अपने आध्यात्मिक हित के बारे में सोचना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे समय आता है जब हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए, एक अच्छी जगह में जाकर बैठ के जप करने के लिए, अपने लिए में अपने प्रगति के लिए भी हमें कोई कदम उठाने चाहिए। नित्य रूप से मंदिर में आना, शामिल होना, कोई सेवा करना, संसार के कार्य तो चलते रहेंगे, इनका कोई अंत नहीं है। तो विदुर जी ने हम सबको सिखलाया है कि तीर्थ यात्रा हमें कैसे करनी चाहिए। तो भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो इत्थम व्रजन भारतम एव वर्षम, तो भारतम एव वर्षम का मतलब है भारतवर्ष। और उस समय महाराज युधिष्ठिर विश्व सम्राट थे संपूर्ण विश्व के, उस समय सारे जगत को ही भारतवर्ष कहा करते थे। आजकल भूगोल के किसी किताब को आप पढ़ेंगे या आधुनिक राजनीति के हिसाब से भारतवर्ष एक बहुत छोटा देश है, परंतु उस समय भारतवर्ष का अर्थ था सारी पृथ्वी। तो सारे पृथ्वी यहां वहां विदुर जी भ्रमण कर रहे थे और पहुंचे कहां पे? प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र गुजरात में है, आप में से अवश्य कई भक्त प्रभास क्षेत्र में गए होंगे, जहां पे श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ, जहां यदुवंशियों का तिरुभाव हुआ। तो जब प्रभास क्षेत्र पहुंचे तो उस समय विदुर जी को पता चला कि यहाँ पे आपस में युद्ध करके सारे यदुवंशियों ने अपना देह त्याग दिया है। और जिस प्रकार से कभी कभी एक दावानल होता है, किसी एक जंगल में एक वन में गर्मी के कारण जब छोटे छोटे पेड़ या कोई उनके शाखाएं एक दूसरे से घिसने लगती हैं तो उस घर्षण के कारण कोई गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी जब उत्पन्न होती है तो उस सूखे वातावरण में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, और चिंगारी जब सूखे लकड़ी से स्पर्श करती है तो आग लग जाता है उस वृक्ष को, और फिर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक आग फैलता है, और इस तरह से सारा जंगल जो है वो नष्ट हो जाता है, और किसी को पता नहीं चलता है कि ये दावानल प्रारंभ हुआ कैसे। ठीक उसी प्रकार से ये संसार भी ऐसे ही है। संसार दावा नल लीढ़लो का, हर सुबह हम गाते हैं। ऐसे चीजें होती रहती हैं संसार में, कहीं कोई युद्ध हुआ, कहीं कोई भयंकर कुछ झगड़ा हो गया, कुछ और गड़बड़ हो गई, दिन प्रतिदिन ऐसी चीजें सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसे किसने शुरू किया, कैसे शुरू हो गया। तो ये है संसार। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उनको पता चला कि जिस तरह से एक वन में आग लगने से सारा वन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से रजोगुण राजसिक भाव उत्पन्न होने के कारण सारे यदु वंश के सदस्य खत्म हो गए। ये एक बाह्य दृष्टि है। 11वें स्कंद में तो सुखदेव गोस्वामी ने काफी विस्तार में इस लीला का, जिसे मोशल लीला कहते हैं, इसका वर्णन किया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। संक्षेप में कहा जाए तो यदुवंश के जो राजकुमार थे, तो राजकुमार होने के नाते क्या होता है, कभी कभी धृष्ट होते हैं। ऐसे राजकुमार अपने आप बहुत ही घमंडी होते हैं और धृष्टतापूर्वक ऐसे बातें बुजुर्गों के प्रति भी करते हैं। तो ये सारे राजकुमार एक बार संतों के पास गए और संतों का मजाक उड़ा रहे थे। तो श्री कृष्ण के एक पुत्र थे जिनका नाम था सांब। तो सांब के कपड़ों के भीतर उन्होंने कुछ रख दिया, कपड़ा आदि रख के ऐसे उसे एक स्त्री का वेश पहना दिया, और ऐसे प्रतीत हुआ कि ये गर्भवती कोई स्त्री है। और फिर संतों के पास जाके पूछने लगे नकली सम्मान देकर कि हे ऋषिगण, कृपया बताइए कि इस सुंदर महिला का पुत्र होगा या इसकी पुत्री होगी। तो संतों ने समझ लिया कि ये लोग, ये धृष्ट जो ये घमंडी राजकुमार हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा इस लड़की के गर्भ से एक लोहे का टुकड़ा उत्पन्न होगा, मुशल उत्पन्न होगा। और ये लोग घबरा गए, और जब कपड़े उठाए तो देखा कि वास्तव में जहां और कपड़े वगैरह उन्होंने रखे हुए थे गर्भवती स्त्री का नकल करने के लिए, वहां से वास्तव में एक लोहे का मुशल निकल आया। अब घबरा गए सारे राजकुमार, सीधे गए राजा उग्रसेन के पास और कहने लगे कि हमसे ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा उग्रसेन भी अभी घबरा गए, क्योंकि संतों ने कहा था कि इसके कारण तुम्हारा विनाश होगा, इस लोहे के मुशल के कारण। तो राजा उग्रसेन चिंतित हुए, अब क्या करना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि इस लोहे के मुशल के चूर चूर किए जाएं और इसे समुद्र में सारे फेंक दिया जाए। तो ऐसे ही किया गया, परंतु समुद्र की लहरें जब तट पे आ गईं तो वो लोहे के छोटे 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 जो टुकड़े थे, कण कण आके उस रेती में आके बस गए। और चमत्कार ये हुआ कि उन लोहे के टुकड़ों से ऐसे और भी लोहे के पेड़ उत्पन्न हो गए, लोहे के पौधे उत्पन्न होने लगे। और जब सारे जगह द्वारका में अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि मुझे लगता है कि क्योंकि अब समय कुछ अमंगल है, अशुभ है, तो प्रभास क्षेत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन तीर्थ स्थान है, वहां हमें सब जाना चाहिए और वहां तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान हमें करने चाहिए शुद्धिकरण के लिए, इन अशुभ लक्षणों से बचने के लिए। तो सारे लोग वहां गए, कोई ना कोई मादक द्रव्यों का सेवन करके उनके होश ठिकाने नहीं रहे, एक दूसरे के साथ ललकारते हुए उनको, एक दूसरे को टोकते हुए भड़काते हुए आपस में उन्होंने परस्पर युद्ध कर लिया और सबकी मृत्यु वहां हो गई। परंतु ये कोई साधारण ऐसे बात नहीं है, ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के कर्मों के और जन्म और तथाकथित मृत्यु के दिव्यता को नहीं जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई और उनके भी जो पार्षद थे उनका भी जन्म और मृत्यु साधारण मनुष्यों की तरह ही हुआ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं देना चाहते हैं। भक्ति के क्षेत्र में अनुमति में उन्हीं लोगों को मिलती है जो श्रद्धावान हैं, अश्रद्धालु लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है। तो ऐसे अश्रद्धालु लोगों को भक्ति के पद से दूर रखने के लिए, भक्ति के शुद्ध क्षेत्र को पवित्र पावन रखने के लिए, ताकि कोई बाहर के कलमश वहां पे नहीं आए, वो ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि ये लोग सोचें अपने भ्रम में ही रहें, अपने माया में ही रहें और भगवान को एक साधारण मनुष्य समझें। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय गए, उसी प्रांत में विश्राम कर रहे थे एक पेड़ के नीचे। उस समय एक शिकारी ने उनके चरण कमलों के अंगूठे को एक हिरण समझकर तीर छोड़े और ऐसे एक निमित्त बना भगवान के तिरुभाव के लिए। वैसे तो भगवान का तिरुभाव दिव्य है, भगवान का शरीर तो साधारण जड़ पदार्थों से बना हुआ शरीर नहीं है। जिस प्रकार से भगवान स्वयं प्रकट हुए अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, उसी प्रकार वो भी अदृश्य हो गए, उनका तिरुभाव हो गया। तो ये सारे लीलाएं अश्रद्धालु लोगों के लिए है। तो मौसल लीला, ये जो यदुवंशियों का एक दूसरे के साथ परस्पर युद्ध करना, इसे भी इसी दृष्टि से समझना चाहिए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से के सामने ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण आए थे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए थे वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। भक्तों की रक्षा आपने की है, दुष्टों का विनाश आपने किया है, धर्म की स्थापना भी की है आपने भगवद गीता आदि उपदेश देकर, तो कृपया अब स्वधाम लौटें आप। तो श्री कृष्ण ने भी सोचा, हाँ, पृथ्वी के गणना से 125 वर्ष पूरे बीत चुके हैं मेरे यहाँ पे आके मेरी प्रकट लीला करके, तो मुझे लौटना चाहिए। परंतु एक समस्या है, ये मेरे सारे यदुवंशी हैं, इनका क्या? मेरे यहाँ प्रकट होने के पहले मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि आदेश देना सारे देवताओं को और उनकी पत्नियों को भी कि उनको यदुवंश में जन्म लेना चाहिए और मेरी लीला में सहायता करनी चाहिए, शीघ्र ही मैं भी प्रकट हो जाऊंगा वहां पर। तो अब जब मुझे स्वधाम जाना है लौट के, इनका क्या होगा? इनको भी तो अपने अपने धाम में जाना होगा, कोई जो स्वर्ग लोक से है उनको स्वर्ग में जाना है, कोई आध्यात्मिक जगत से आए हों तो उनको वहां लौट के जाना है। इसलिए मुझे ऐसे कोई मार्ग निकालना चाहिए, कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे कि मेरे तिरुभाव के पहले इनका तिरुभाव हो। दूसरी बात, श्री कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे शरण में होने के कारण यदुवंशी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उनको अपने ही शक्ति का अनुमान नहीं है, और इसलिए जब अपने जोश में आके, उत्साह में आके वो करते हैं तो सब जगह तहस नहस कर देते हैं। और तीसरी बात, क्योंकि ये मेरे इतने निकट हैं, मेरे निज जन हैं, मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इनके हृदय में हो सकता है थोड़ा एक गर्व सा उत्पन्न हो गया हो कि हम श्री कृष्ण के परिवार के लोग हैं, और इस तरह से ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ये बहुत बोझ बन जाएंगे। जब तक मैं हूँ मैं उनको रोक के रख सकता हूँ, उनको सीमा में भीतर रख सकता हूँ, जैसे समुद्र का तट समुद्र के जल को रोक के रखता है। परंतु यदि मेरा तिरुभाव पहले हो गया तो फिर क्या होगा, ये लोग सारे पृथ्वी में जाके तहस नहस कर देंगे हर चीज का। तो इसलिए क्योंकि ये इतने शक्तिशाली हैं और कोई व्यक्ति इनका विनाश नहीं कर सकता, आपस में एक दूसरे के ही विनाश ये कर सकते हैं, यही एकमात्र रास्ता है। तो उन्होंने इस तरह से एक योजना बनाई, तो भगवान की लीला इस प्रकार से हुई। तो ये सारी बातें आकर विदुर जी ने वहां पर सुन ली और उनको हृदय पे काफी धक्का पड़ गया कि अरे चकाचौंध करने वाली बात थी, सारे यदुवंशी चले गए स्वधाम, श्री कृष्ण भी नहीं रहे, तो विदुर जी को के हृदय को कितना धक्का पड़ा होगा हम इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। फिर प्रभास क्षेत्र छोड़कर वो आगे चले गए सरस्वती नदी जहां बहती है वहां पर। आज तो सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु शास्त्रों के आधार पर हमें समझ लेना चाहिए कि सरस्वती नदी बहती है, भले वो पृथ्वी के अंदर बहती है लेकिन है अवश्य। तो चलते 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 अनेक स्थानों में गए। सुखदेव गोस्वामी ऐसे 11 तीर्थ स्थानों का उल्लेख करते हैं जो सरस्वती नदी के तट पे हैं, जहां की विदुर जी गए थे, और हर एक स्थान में बड़े बड़े भगवान के मंदिर थे, वहां पर भी वो गए। और इस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद काफी विस्तार में वर्णन करते हैं कि मंदिरों का महत्व क्या है। कई बार आधुनिक काल में लोग तर्क करना पसंद करते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है भगवान के भक्ति के संबंध में, और वो कहते हैं कि भगवान के इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करने की क्या आवश्यकता है, ये जो आप पैसे खर्च करते हैं, इतने सारे लाखों लाखों रुपए खर्च करते हो एक मंदिर का निर्माण कार्य करने के लिए, तो वही पैसे गरीबों को आप दे देते, इतने भूखे लोग हैं जग पृथ्वी पर, तो उनको आप क्यों नहीं देते। तो ऐसे भी कई बार लोग तर्क करते हैं, परंतु देखिए हर चीज का महत्व होता है, हर चीज का कोई उद्देश्य कोई कार्य होता है। जैसे कि आधुनिक समाज में बहुत सी चीजें बनाई जाती है, निर्माण कार्य बहुत सारे हो रहे हैं जिनके ऊपर लाखों तो क्या अरबों रुपए खर्च होते जाते हैं, जैसे खेल और क्रीड़ा के प्रतियोगिताएं के लिए प्रतियोगिताओं के लिए कितने बड़े बड़े ऐसे स्थान बनाए जाते हैं, रंगमंच बनाए जाते हैं, सारे गांव के गांव खड़े किए जाते हैं जब खेल की स्पर्धाएं होती हैं। तो इतने सारे करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो तो वो गरीबों को क्यों नहीं देते, गरीबों को भोजन क्यों नहीं खिलाते, इतने बड़े बड़े सिनेमा के घर बनाते हो और शराब के अड्डे बनाते हो, बड़े बड़े होटल बनाते हो, करोड़ों रुपए खर्च करते हो बनाने के लिए, तो वो पैसा बचा के गरीबों को क्यों नहीं दे सकते, केवल मंदिरों को ही क्यों उंगली उठा रहे हो भाई, सब बात सही है ना। और देखिए आप भी ये विचार कीजिए कि आप अपने पैसों को कैसे खर्च करते हो, आप भी जाते हो ना होटल में सिनेमा में यहाँ वहाँ, कितने पैसे खर्च करते हो और आप कितने ठाट से रहते हो। तो आप भी सरल जीवन बिताइए, जो बचता हुआ पैसा आप भी गरीबों को दे दीजिए। तो इस तरह से व्यर्थ के तर्क लोग करते हैं। तो जिस तरह से अनेक चीजों के स्थान अपने मनुष्य समाज में हैं, वैसे ही मंदिरों का महत्व है। जो कार्य मंदिरों के द्वारा हो सकते हैं वो दूसरे जगह नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के जितने मंदिर हैं वो आध्यात्मिक शिक्षाओं शिक्षा के केंद्र बने, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के समान बने, जहां पे लोग आके भगवत भक्ति के बारे में कुछ सीख सकें, ज्ञान पाएं, प्रेरणा पाएं, क्योंकि ऐसे ज्ञान और ऐसे प्रेरणा तो कहीं दूसरी जगह तो नहीं मिलता, शेयर बाजार में जाके तो नहीं मिलेगा, या किसी मंडी में सब्जी मंडी में जाके नहीं मिलेगा, सिनेमा घर में जाके नहीं मिलेगा। तो फिर कोई ना कोई स्थान तो होना चाहिए जहाँ की श्रद्धालु लोग इकट्ठे हो जाएं, जहाँ भगवान के बारे में कुछ सुने, कुछ बोलें, कुछ समझें। ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कार्य है मनुष्य समाज में। अज्ञान के कारण लोग ऐसे चीजों को व्यर्थ मानते हैं, पैसों का फिजूल खर्च होना ऐसे मानते हैं, परंतु वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सारे मनुष्य समाज में। जितना महत्वपूर्ण कुछ होता है उतने पैसे हमें खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए। और एक बात भी देखिए, अपने लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन और देखिए राष्ट्रपति के लिए और अलग अलग जो बड़े लोग होते हैं समाज में, उनके लिए बड़े बड़े घर बनते हैं शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये तो एक देश के पति होते हैं, राष्ट्रपति एक राष्ट्र के पति होते हैं, उनके लिए इतना बड़ा घर बनाया जाता है, महल। राज्यपाल को देखिए हर एक राज्य में, उनके लिए कितना बड़ा महल बनाया जाता है, वो तो एक छोटे से राज्य के पति है ना। यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पति हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा महल बनाना चाहिए, और कितने सारे बड़े बड़े महल होने चाहिए उनके लिए। तो इस तरह से हमें लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि मंदिरों का निर्माण करना ये कोई पैसे व्यर्थ करने की बात नहीं है। साथ साथ हम ये भी देखना चाहिए, और प्रभुपाद जी ने इस बात की चेतावनी दी बार बार कि हमारे मंदिर ऐसे होने चाहिए जहां लोग इकट्ठे हो जाएं श्रवण कीर्तन सेवा के लिए, भक्ति में अपने आप को प्रेरित करने के लिए हम यहां पर आते हैं। तो ये उद्देश्य है, मंदिरों का उद्देश्य केवल आके दर्शन करके जाने के लिए नहीं है, यद्यपि इतना भी अच्छा है, क्योंकि अनेक लोग अलग अलग स्तर पर रहते हैं, कम से कम मंदिरों में तो आते हैं दर्शन करने के लिए, कितना लाभ होता है उनको। और यदि यही लोग बाद में आके श्रवण करें, कीर्तन करें, साधन भक्ति को स्वीकार करें अपने जीवन में, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी यहां पर काफी कुछ मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे विदुर जी चलते 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 सरस्वती नदी के तट पे होकर फिर और पूर्व की ओर चल पड़े, और वह अंततः पहुंच गए कालेन तावत यमुनाम उपेत्या, यमुना नदी के तट पर आ पहुंचे। और यहां पे क्या हुआ, तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श। तत्र वहां पर जो महान भागवत हैं उद्धव, उनको उन्होंने देखा। तो उद्धव जी बहुत महान भक्त हैं भगवान के, आप तो जानते ही हैं। उद्धव जी के बारे में पहले दिन हमने संक्षेप में चर्चा की थी, उनके चरित्र के बारे में, इतिहास के बारे में। तो जब विदुर जी ने उद्धव को देखा वहां यमुना के तट पर, भ्रमण करते 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 वो यमुना तक पहुंच गए थे, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। यमुना के तट पे आना तो ये एक बहुत पावन स्थान है, ये भी एक तीर्थ स्थान है, यमुना नदी भी तीर्थ है, पावन जल है यमुना जी का। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रज भूमि का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक शहर दिल्ली से लेकर मथुरा जिले तक, और हरियाणा के, उस समय हरियाणा नहीं था, उस समय पंजाब था, गुड़गांव इलाके को मिलाकर ये सारा जो है ये व्रज भूमि कहलाता है। ये बहुत पावन भूमि है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को प्रकट किए थे 5000 वर्ष पूर्व, और यमुना जी इस प्रांत से, इस ब्रजभूमि से बहके जाती हैं। तो यमुना जी भी एक कोई साधारण नदी नहीं है। हम वास्तव में हर एक नदी को पवित्र मानते हैं, लेकिन उनमें से एक तारतम्य भी होता है। यमुना, गंगा, ये अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो यमुना को भी गंगा से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए यमुना जी ने प्रारंभ भगवान के प्राकट्य के समय से ही भगवान की लीला में भाग लिया। जब श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए कंस के कारागार में, तो वसुदेव जी उनको ले गए यमुना पार, और यमुना उस समय वृष्टि हो रही थी, वर्षा हो रही थी, मूसलधार वर्षा हो रही थी, फिर भी भगवान कृष्ण के ऊपर जल नहीं पड़ा। और जब वो यमुना के सामने आए, देखा तो बाढ़ है यहां पर, अब वहां कोई नौका नहीं, कुछ नहीं, कैसे यमुना पार करेंगे। वसुदेव जी खड़े थे वहां श्री कृष्ण को अपने सर पे रख के छोटे से टोकरी में, और उस समय यमुना देवी ने सोचा कि मेरे आराध्य देव प्रकट हुए हैं। जब गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझे भौतिक जगत में जाना है, पृथ्वी लोक पर जाना है, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा था कि चलो हम जाते हैं पृथ्वी लोक पर। तो राधा रानी ने कहा नहीं, क्यों नहीं, चलो वहां जाके लीला का, वहां ब्रजभूमि प्रकट होगी। तो राधा रानी तैयार हुई, उन्होंने कहा मेरे दो शर्त हैं। क्या है? यदि यमुना जी आएंगी और गोवर्धन वहां आएंगे तब मैं आने के लिए तैयार हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा ये दोनों पहले से ही प्रकट हो चुके हैं। तो यमुना जी पहले से ही चाहती थी कि यहां अब धरातल में आके मैं श्री कृष्ण के इन भौम वृंदावन की लीलाओं को भी देखूं। तो बहुत आतुर थी श्री कृष्ण के चरण कमलों के रज को प्राप्त करने के लिए। तो जब वसुदेव श्री कृष्ण के साथ में आए, यमुना के तट पे खड़े हो गए, तो यमुना जी ने रास्ता दिया वसुदेव को। जिस प्रकार से त्रेता युग में समुद्र ने रास्ता दिया श्री रामचंद्र और उनके भक्तों को। और जब बीच में से जा रहे थे आसानी से वसुदेव, तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी शरारत की, परंतु शरारत तो क्या, अपने शुद्ध भक्त यमुना के ऊपर कृपा करने के लिए की। वो ऊपर जो टोकरी थी उसमें से गिर पड़े जल में। अब वसुदेव की दशा क्या हुई होगी उस समय, हम कल्पना कर सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते हैं। तो जब श्री कृष्ण गिर पड़े जल में, तो वसुदेव तो प्राय पागल की तरह यहां वहां खोज लगे, कहां गया मेरा बच्चा। अंततः बच्चा तो मिल गया, परंतु यमुना देवी अब संतुष्ट हो गई थी। यमुना देवी चाहते थे कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श मेरे जल से हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो श्री कृष्ण लीला के प्रारंभ से ही यमुना देवी की भूमिका भगवान की लीलाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। यमुना देवी की इच्छा पूर्ण हो गई, श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए वसुदेव के लिए। उन्होंने अपने टोकरी में फिर से रखा, जल्दी से निकल गए यमुना पार करके। और एक महत्वपूर्ण कारण है, यमुना वृंदावन और मथुरा की सीमा है। यमुना अभी काफी हट चुकी हैं। जिस रास्ते से यमुना बहती थी 5000 वर्ष पूर्व, अब उस रास्ते से काफी हट चुकी हैं। फिर भी एक अंतर सा है वृंदावन में और मथुरा में। अब जो श्याम सुंदर यशोदा नंदन कृष्ण हैं, वो तो वृंदावन में निवास करते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं, अपने माता और पिता यशोदा और नंद महाराज को आनंद देते हैं, गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं, अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग में क्रीड़ा करते हैं। तो ये है यशोदा नंदन, नंद नंदन श्री कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर। ये एक वैश्य की भूमिका निभाते हैं। आखिर हम सब का पेशा हो सकता है ना, कोई वकील है तो कोई अध्यापिका है, कोई कुछ है कोई कुछ, तो भगवान का पेशा क्यों नहीं हो सकता। तो भगवान का पेशा है कि वो गायों को चराने वाले हैं। तो ये गाय गोचारण लीला श्री कृष्ण करते हैं वृंदावन में, मथुरा में नहीं करते। मथुरा में जाके तो वो एक क्षत्रिय बन जाते हैं, एक राजकुमार बन जाते हैं, और आगे चल के द्वारका में द्वारकाधीश बन जाते हैं। तो इसलिए वृंदावन में रहने वाले जो कृष्ण हैं वही कृष्ण हैं जो कि मथुरा जाते हैं और द्वारका जाते हैं। अवश्य कृष्ण ही तो है जो जाते हैं एक से दूसरी जगह, परंतु वो एक दूसरे भाव को स्वीकार करते हैं। यहां एक ग्वाल बाल का भाव है वृंदावन में, और वहां एक राजपुत्र का भाव है। वहां वो बड़े ठाठ से रहते हैं, यहाँ वो एक छोटे से गांव में रहते हैं ग्वाल बालों के साथ, गोप गोपियों के साथ में, गौओं के साथ में। तो वहां वो जाने जाते हैं देवकी नंदन, वसुदेव नंदन के रूप में, और यहां जाने जाते हैं यशोदा नंदन और नंद नंदन के रूप में। तो है वही कृष्ण, परंतु अपने आप को वो विस्तार करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, तो श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं छोड़ते, नहीं जाते हैं। तो फिर वहां यमुना पार करके अभी देवकी नंदन वहां प्रकट हो गए। क्षमा कीजिए, उल्टी बात, देवकी नंदन यहां थे, अब वो यशोदा नंदन बन गए, क्योंकि वसुदेव जी उनको ले जा रहे थे मथुरा से वृंदावन। तो अभी देवकी नंदन और जितने भी अन्य रूप हैं भगवान कृष्ण के, वो सारे श्याम सुंदर गोविंद उनके दिव्य शरीर में विराजमान रहते हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो जब वसुदेव जी यमुना पार करके गए, तो यमुना में गिरे श्री कृष्ण जानबूझ के, तो अभी देवकी नंदन आगे चल के बने यशोदा नंदन। इस तरह से यमुना जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और बाद में श्री कृष्ण गायों को चरा के ले आते थे यमुना के तट पे, कितनी सारी लीलाएं यमुना के तट पे हुआ करती थी, और यमुना जी ने इन सब का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्नान किया यमुना जी में, नौका विहार किया। इस तरह से यमुना जी का महत्व बहुत अधिक है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यमुना आए, ब्रजभूमि गए थे, यमुना के तट पे आए, तो उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा था। बल्कि वृंदावन पहुंचने के पहले भी, संन्यास लेने के बाद जब वो गंगा के तट पे आए थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बताया कि हम वृंदावन जा रहे हैं, ये यमुना है। तो वो प्राय कूद पड़े थे यमुना में, यमुना समझकर उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम्ल वित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री। चिदानंद भानो, भानो पुत्री, भानो अर्थात सूर्य, सूर्य देव की पुत्री हैं, चिदानंद हैं आप, चित और आनंद आध्यात्मिक है आप, आपका जल भौतिक नहीं है, दिव्य आनंदमय है आपका जल। चिदानंद भानो सदा नंद सुनो पर प्रेम पात्री, नंद सुनो अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को के प्रति पर प्रेम पात्री, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली हैं आप। सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री, द्रव ब्रह्म गात्री, आध्यात्मिक जगत का जल है आपका, आपका जल ये कोई भौतिक जगत का जल नहीं है, जिस तरह से गंगा का जल भी चरणामृत है, विरजा से आया हुआ है ये जल। वामन, आज तो वामन देव का आविर्भाव दिवस है ना, तो भगवान श्री वामन देव ने जब अपना दूसरा कदम रखा, तो ब्रह्मांड के आवरण में उन्होंने छोटा सा छेद कर दिया, तो विरजा का जल, कारण सागर का जल उनके चरण कमलों को स्पर्श करता हुआ इस भौतिक सृष्टि में, भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर गया, और वो है गंगा। तो ये भी चरणामृत है, आध्यात्मिक जगत का जल है। उसी तरह से यमुना का जल भी द्रव ब्रह्म गात्री, अघा नाम लवित्री, अघ अर्थात पाप, तो इस भौतिक जगत के लोगों के पापों को नष्ट करती हैं आप हे यमुना देवी। जगत क्षेम धात्री संपूर्ण जगत में मंगलमय वातावरण का निर्माण करती हैं आप। पवित्र क्रियान्नह हमारे अस्तित्व को वपु वपु अर्थात अस्तित्व हमारे शरीर मन बुद्धि हर चीज को पवित्र क्रियान्नह नह मतलब हमारे, तो हमारे अस्तित्व को आप पावन कर दीजिए पवित्र कर दीजिए हे मित्र पुत्री। मित्र अर्थात सूर्य। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने यमुना देवी के चरणों में प्रार्थना की। तो हम भी जब अगली बार वृंदावन जाएंगे या यमुना का दर्शन दूसरे जगह में भी शायद कहीं करेंगे तो हम शायद ये इस श्लोक का उच्चारण करें तो बहुत सुंदर रहेगा। चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए वृंदावन के लीलाओं का स्मरण करते हुए हम यमुना जी का गुणगान इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां बताया गया है ना कि वो भानु पुत्री है मित्र पुत्री है। उनके एक भाई भी हैं यमराज, यमी और यम ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों ही महान भक्त हैं भगवान कृष्ण के। यमराज भी तो एक महाजन है ना, श्रीमद् भागवत में तो इसकी पुष्टि है। परंतु देखिए उन दोनों की सेवाओं में कितना अंतर है। दोनों ही सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, लेकिन सेवा का गुण जो है सेवा किस तरह से अलग है जरा सोच के देखिए। यमुना देवी वो सबको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा देती हैं। जो उनके जल में स्नान करता है वो पावन हो जाता है, उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होने लगती है निश्चित रूप से। लेकिन यमराज का काम क्या है? बिल्कुल उल्टा, लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध के रखना। तो भाई जो काम करते हैं बहन उसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। भाई का काम है बद्ध जीवों को बांध के रखना, बद्ध अवस्था में भौतिक जगत में रखना, और बहन का कर्तव्य है कि जिन बद्ध जीवों को उनके भाई बांध के रख रहे हैं उनको छुटकारा दिलाना। दोनों के बीच में संबंध अच्छा है, बहुत प्रेम है दोनों भाई बहन के बीच में। दोनों शुद्ध भक्त हैं भगवान कृष्ण के। तो इस तरह यमुना जी का महत्व है, विषय लंबा है, परंतु उद्धव जी के मिलने का स्थान विदुर जी से ये था। तो उद्धव जी से वहां पे मिले और ब्रजभूमि के प्रांत में ही हुए होंगे उस समय। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि आज भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि बहुत लालायित रहते हैं वृंदावन जाने के लिए, और बड़े भाव विभोर होकर वो श्री कृष्ण की खोज में जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ब्रजभूमि में जाकर वो सीधे आमने सामने श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि हम केवल श्री कृष्ण की खोज में रहें, क्योंकि श्री कृष्ण की खोज में रहना ये श्री कृष्ण को आमने सामने देखने के बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर नहीं है। बल्कि जब भक्त श्री कृष्ण की खोज में रहता है उसके हृदय में एक विरह का भाव रहता है जिससे कि उसे एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जो कि बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे ही विरह के भाव का अनुशीलन करने के लिए सिखलाया है। उनके जो प्रमुख शिष्य थे षड गोस्वामीगण जो वृंदावन में निवास करते थे वो भी इसी तरह से करते थे। तो खैर आगे जब उद्धव जी को देखा विदुर ने, बहुत ही हर्षित हुए, बड़ा दिव्य आनंद हुआ उनको। वो जानते थे कि उद्धव कितने महान भक्त हैं और आखिर संबंधी भी थे ना, गहरा संबंध उनका था यदुवंशियों में और कुरुवंशियों में, तो गहरा संबंध था ही। और विदुर जी जानते थे कि उद्धव कितने प्रिय हैं श्री कृष्ण को, दिखने में बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह दिखते थे उद्धव जी। जब मथुरा से वृंदावन भेजे गए उद्धव जी गोपियों को और अन्य ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि वो लोग श्री कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे। तो दूर से जब ब्रजवासियों ने उद्धव को देखा, उनको लगा कि श्री कृष्ण आ गए। वो तो प्रतिदिन प्रतीक्षा में रहते कि कृष्ण कब आएंगे आएंगे। प्रातः काल होते ही वो मथुरा की ओर देखते, श्री कृष्ण ने कहा है कि वो शीघ्र ही लौट के आएंगे। सायंकाल तक देखते रहते, नहीं आए, फिर निराश होकर अपने घरों में जाते इस आशा से कि अवश्य अगले दिन कल सुबह श्री कृष्ण आएंगे। तो एक बार इसी तरह से देखते देखते उन्होंने देखा कि अरे ये कौन आ गया है, ये तो कृष्ण ही है। पर लेकिन पास में आए तो देखा कि ये कृष्ण नहीं है, कोई कृष्ण के भाई होंगे, कृष्ण के कोई मित्र होंगे। फिर उनको परिचय उनका परिचय हुआ उद्धव जी से। तो उद्धव को देखकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने आलिंगन किया। विदुर जी का उद्धव जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव अनुचरम प्रशांतम बृहस्पते है प्राक तनयम प्रतीतम। वासुदेव अनुचरम, अनुचरम अर्थात जो सदैव उनके साथ रहते हैं, चरना मतलब हिलना, जाना एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो अनु मतलब पीछे पीछे, तो अनुचर वो होता है जो किसी व्यक्ति के पीछे पीछे रहता है, दूसरे शब्दों में अवश्य उनके साथ में रहता है। तो क्योंकि उद्धव जी सदैव श्री कृष्ण के साथ में रहते थे, इसलिए कहा है वासुदेव अनुचरम प्रशांतम प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत। केवल शुद्ध भक्त ही इस तरह से अंतःकरण से शांत हो सकता है। बृहस्पते है प्राक्तनयम प्रतीतम, और पहले वो बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं उनके वो शिष्य रहे, इसे बहुत ही बड़े विद्वान थे उद्धव, शास्त्रज्ञ थे, बुद्धिमान थे, इसलिए तो श्री कृष्ण उनसे सलाह लेते थे। और फिर आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम, बड़ा गाढ़ आलिंगन विदुर जी ने किया, प्रणयेन बड़े प्रेम से आलिंगन किया, और आलिंगन करके अपृच्छत उनसे प्रश्न किया। क्या पूछा? भगवत प्रजा नाम, भगवत प्रजा अर्थात भगवान के प्रजा, भगवान के परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा। क्योंकि अब वो द्वारका में रहते थे उद्धव, अब उनके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछने जा रहे हैं, और ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए अभी अभी हम कह चुके हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कि विदुर जी भ्रमण करते 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 प्रभास क्षेत्र पहुंचे, और वहां उन्होंने सुना कि सारे यदुवंशियों का नाश हो चुका है, श्री कृष्ण का भी दुर्भाव हो चुका है। वैसे श्री कृष्ण का तिरुभाव होना था लगभग उसी समय या थोड़ी देर बाद होता, परंतु निश्चित ही यदुवंशियों का तिरुभाव तो हो चुका था। तो जब उन्हें पता था कि यदुवंशियों का विनाश हो चुका है, फिर भी यहां आकर उन्होंने उद्धव से भगवान कृष्ण के परिवार के सदस्यों के बारे में क्यों प्रश्न किया? तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं, अवश्य हमें लगे कि ये बड़ी विचित्र बात है कि जानते हुए भी विदुर जी ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि मानो उनको पता नहीं, तो इसका कारण क्या था? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी अपने टीका में कहते हैं कि यदि यदुवंशियों के तिरुभाव की खबर इतनी चौंकाने वाली खबर थी कि विदुर जी इसको सहन नहीं कर पाए थे, बहुत उद्वेग उत्पन्न करने वाली खबर थी, वो हृदय को विचलित कराने वाली खबर थी कि भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, उनके निज जन हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो अदृश्य हो गए, तिरुभाव उनका हुआ, परंतु किस तरह से हुआ, ये भी सुनकर वो बहुत ही उनके हृदय पे बहुत धक्का पड़ा था। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि जो जिज्ञासा हुई उनको पूछने के बारे में कि इनके बारे में आगे चल के पूछें। और वैसे पांडु और वैसे विदुर और उद्धव का संबंध भी काफी गहरा है, क्योंकि देखिए विदुर जी पांडु के भाई थे, पांडु की पत्नी थी कुंती, कुंती के भाई थे वसुदेव, वसुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे उद्धव। तो उद्धव बहुत कनिष्ठ थे विदुर की तुलना में, तो विदुर जी उनके लिए पिता तुल्य थे। तो जब वो मिले तो विदुर जी ने आलिंगन किया उनको, और पहले तो उद्धव जी ने नमस्कार किया, क्योंकि ये एक प्रथा है, एक मर्यादा होती है, शिष्टाचार जिसे कहते हैं, कि जब कोई वरिष्ठ से मिलते हैं तो हम प्रणाम करते हैं और वरिष्ठ हमें फिर आलिंगन करता है। जो कनिष्ठ होते हैं वो अपना सम्मान प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं उस नमस्कार के द्वारा, प्रणाम के द्वारा, और जो वरिष्ठ होते हैं वो अपना प्रेम व्यक्त करते हैं आलिंगन के द्वारा। तो फिर उद्धव जी ने नमस्कार किया और विदुर जी ने उनको आलिंगन किया बड़े प्रेम से। रिश्तेदार तो थे ही, और रिश्ता इस तरह का शारीरिक रूप से नहीं भी हुआ होता फिर कि दोनों महान भक्त थे, इसलिए आपस में उनका प्रेम होना बहुत स्वाभाविक था। तो यहां पर अब वो कई प्रश्न पूछने वाले हैं उनको। सबसे पहले उद्धव जी से उन्होंने प्रश्न पूछा कृष्ण और बलराम के बारे में। कच्चित पुराणाओं पुरुषो स्वनाभ्य, पूछने लगे पुराणाओं पुरुषो, पुराण पुरुष, पुराण अर्थात सबसे वरिष्ठ पुरुष, सबसे वरिष्ठ पुरुष कौन है? भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण तो हर चीज के उद्गम है, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो पुराण पुरुषम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो श्री कृष्ण नव यौवन है, किशोर रूप में है, फिर भी पुराण पुरुष है, सबसे वरिष्ठ पुरुष है सारे सृष्टि में। परंतु यहां पे उद्धव जी कहते, विदुर जी कहते हैं पुराणौ पुरुषौ, ये द्विवचन है। तो इसका मतलब है कि वो केवल कृष्ण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, उनके भाई बलराम के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो कृष्ण के बारे में, बलराम के बारे में पूछते हैं कि बताइए कि कृष्ण बलराम कहाँ है? वो दोनों यहां धरातल पर प्रकट हुए थे स्वनाभ्य पद्म अनुवृत्ति, पद्म अर्थात जिनका जन्म पद्म से हुआ वो है पद्म। ब्रह्मा जी का जन्म तो उस कमल पुष्प के ऊपर हुआ जो कि गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुआ, तो इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है पद्म। तो भगवान कृष्ण और बलराम जो कि ब्रह्मा जी के निवेदन पर यहां पर प्रकट हुए थे, कुशलम सुरग्रह, वो क्या कुशल मंगल है, वो सब ठीक ठाक है। वो कृष्ण बलराम जो कि अवतीर्ण हुए हैं कुशलम विधाय कृतक्षण, अर्थात इस धरातल के, इस पृथ्वी के ऐश्वर्य को, इसकी संपत्ति को, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो अवतीर्ण हुए हैं। तो वो कृष्ण बलराम कैसे हैं? ये सबसे पहला प्रश्न विदुर जी का था उद्धव के प्रति। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि विदुर जी का ये सबसे पहला प्रश्न क्यों था, और इसका उत्तर भी बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं कि कारण ये है कि विदुर जी जानते थे कि वास्तव में भगवान के कृपा के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई समृद्धिशील नहीं हो सकता। इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण वहां हैं और उनकी कृपा दृष्टि सबके ऊपर यदि बनी हुई है तो इसका मतलब है कि सभी लोग कुशल मंगल रहेंगे, ये उद्देश्य था। तो मनुष्य समाज में समृद्धि और मांगल्य ये भगवान की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में, इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषधि वीरुधः वनाद्रि नद्युतन्वन्तो हे दन्ते तव वीक्षितैः। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, यहां पर देखिए इमे जनपदाः, ये सारे जनपद हैं, गांव शहर आदि सब हैं, और स्वृद्धाः, ये सब बिल्कुल अभी खिल रहे हैं, सब बहुत ही समृद्धिशील हैं और बहुत ही ऐश्वर्यशाली हैं। और आगे देखिए सुपक्वौषधि वीरुधः, जितने भी वनस्पति हैं, वन हैं, पेड़ पौधे हैं, सब खिल रहे हैं, जंगलों में, वनों में, खेतों में भूरी भूरी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में सब कुछ पर्याप्त उपलब्ध रीति से उपलब्ध है। वनाद्री नदी उदन वंतो, वन जो हैं उनमें भी बहुत सारे पेड़ हैं, और पहाड़ों में तरह तरह के जो खनिज पदार्थ हैं, धातुएं हैं, वो भी हैं, और समुद्र में भी नाना प्रकार के ऐश्वर्य जैसे मोतियां हैं वो सब उपलब्ध होती हैं। ही एधन्ते, इनकी वृद्धि हो रही है, क्यों? तव वीक्षित ही, आपकी कृपा दृष्टि के कारण। जिस स्थान में भगवान का दृष्टिपात होता है, पड़ता है, वो स्थान समृद्ध हो जाता है। उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य समाज में समृद्धि प्रकृति के अनेक उपहारों पर निर्भर है, न कि कोई विशाल औद्योगिक कारखानों पर। आजकल आर्थिक विकास का मापदंड है कि कितने बड़े बड़े कारखाने बने हैं और कितने तथा कथित सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हैं, परंतु ये वास्तव में सुख और समृद्धि के लक्षण नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रगति इतने होने के बाद भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दुखी होते जा रहा है आधुनिक काल में, क्योंकि भगवान केंद्र बिंदु नहीं रहे हैं। पर्यावरण का शोषण हो रहा है, मनुष्य भी सारे प्राणियों का शोषण कर रहा है, इंसान एक दूसरे का शोषण कर रहा है, इसलिए अब भगवान की कृपा दृष्टि नहीं रही, इसलिए नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो विदुर जी जानते थे कि सर्वप्रथम मुझे पूछना चाहिए कि श्री कृष्ण और श्री बलराम ठीक तो है ना। बलराम जी तो श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, और फिर बलराम जी से प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, नारायण सब उत्पन्न होते हैं। इसकी चर्चा तो जन्माष्टमी के समय शायद आपने सुना ही होगा। तो ये सबसे पहला प्रश्न विदुर जी का था कृष्ण और बलराम के बारे में, और आगे चल के और अनेक प्रश्न करेंगे। एक एक चुन चुन के वो कृष्ण के परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए उनके बारे में पूछेंगे, वो भी तो सब ठीक ठाक है ना, वो भी वहां भी सब कुशल मंगल है ना। जैसे कि हम जब किसी पुराने मित्र को मिलते हैं काफी समय से के बाद में, तो पूछते हैं आपके घर में सब कैसे हैं। तो इसी तरह से विदुर जी भी उद्धव जी से पूछ रहे हैं। तो कल हम ये सुनेंगे कि और किन के बारे में विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न किए और आगे चल के उनका संवाद कैसे चला। तो आज के लिए कथा यही हम विराम देते हैं, आपको धन्यवाद देते हुए कि आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, इतने ध्यान से आपने यहाँ इस कथा का श्रवण किया। थोड़ी सूचनाएं अभी हैं, कृपया 2 मिनट बैठे रहिएगा, और कल फिर से हम आपको मिलेंगे यहाँ इसी स्थान में। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।